नमस्कार, जीवन रत्न कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जिस आत्मिक गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे वह सर्व सिद्धियों की खान है। कोई भी उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। जी हाँ, वो हम सबका वास्तविक सद्धर्म है, शांति। शांति की राह ही समृद्धि की राह है। शांति स्वयं से संबंध है। किसी को शांति का मार्ग दिखाना सर्वोत्तम दान भी है। आइए अपने इस अविनाशी और अनादि गुण के बारे में और गहराई से जानें और सबसे सुंदर जीवन और समाज का निर्माण करें।
ओम शांति। सद्गुण ही मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। इस श्रृंगार से ही मनुष्य की शोभा है और उसमें भी विशेषकर सुख और शांति की चाहना कौन नहीं रखता है। इस तनाव भरे युग में हर इंसान यही अनुभव करना चाहता है कि कहीं से भी दो घड़ी के लिए भी शांति की अनुभूति हो जाए। तो शांति में कुछ क्षण के लिए भी वो सुख का अनुभव कर पाते हैं। शांति का गुण बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ये गुण कैसे मनुष्य जीवन में आए? वैसे तो यही माना जाता है शांति मनुष्य जीवन का स्वधर्म है। इसीलिए तो गीता में भी कहा हुआ है कि हे अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। पर धर्म अर्थात देह, ये पर है। मनुष्य इस जाति बाद में आ गया है कि पर धर्म अर्थात आज हम हिंदू हैं, तो हिंदू न हो करके दूसरे कोई धर्म को अपनाए तो ये पर धर्म हो गया। नहीं, वास्तव में स्व अर्थात आत्मा और आत्मा का निज धर्म शांति है। आत्मा से पर ये शरीर है। जो शरीर के धर्म में आ जाता है अर्थात शरीर का धर्म है देह अभिमान। देह अभिमान में आकर के जो कर्म करता है, जो भाव रखता है, जो भावनाएं रखता है, वही पर धर्म हो गया। ये पर धर्म में जब मनुष्य स्थित हो जाता है तो दुख की अनुभूति करता है, स्वधर्म सुख अनुभव कराता है। अर्थात जब हम शांति अपने स्वगुण में स्थित होते हैं तो ये स्वगुण यही स्वधर्म है और ये स्वधर्म मनुष्य को इंटरनल सुख का अनुभव कराता है, एक मेंटल रिलैक्सेशन का अनुभव कराता है। परंतु ये शांति स्वधर्म के लिए भी आज इंसान कितने जगह पर भटकता है, ढूंढता है कहीं से दो घड़ी के लिए भी मुझे शांति प्राप्त हो जाए। तब तो कहा जाता है कि शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। और भीतर कहाँ है? कईयों ने कह दिया ये मन की स्थिति का दूसरा नाम है। वास्तव में शांति हमारा स्वगुण है और उसमें जब मन को स्थित किया जाता है तो उसका अनुभव करना अति सहज हो जाता है। लेकिन शांति से कई बार कई व्यक्ति ये सोचने लगते हैं कि शांति माना निष्क्रियता, निष्क्रियता का वाली शांति नहीं चाहिए। कर्म करते हुए भी मेरे मन की स्थिति शांति की स्थिति में रहे, वो शांति मुझे चाहिए। इसलिए शांति का भी भाव कई प्रकार से लिया गया है। कई लोग जंगल में चले जाते हैं, सोचते हैं वहां शांति प्राप्त हो जाएगी। वो वातावरण की शांति अवश्य है, लेकिन वातावरण की शांति भी सदाकाल अनुभव करना नहीं चाहता है इंसान। हाँ, कुछ टेंशन्स आ गए, जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ गया तो सोचता है इससे तो दूर कहीं जंगल में चले जाए, कहीं समुद्र किनारे चले जाए जहाँ कोई भी न हो, वहाँ वातावरण की शांति मिलेगी। परंतु ये वातावरण की शांति भी कितना दिन अच्छी लगती है? 2-4 दिन उसके बाद व्यक्ति अपने आप में अकेलापन महसूस करने लगता है, और इसलिए वो वापस शहर के पार आ जाता है। यानी ये वातावरण की शांति भी थोड़े दिन अच्छी लगती है, ज्यादा दिन अगर उसमें रहे तो अकेलापन, और वो अकेलापन अंदर ही अंदर इंसान को खाने लगता है। वो अकेलेपन में और ही उसके मन के विचार इतने तेज भागने लगते हैं, पुरानी बातें याद करने लगता है, और वो वातावरण की शांति में होते हुए भी शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। दूसरी ओर देखा जाए तो जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है, वहां भी एक सन्नाटा छा जाता है, वो भी एक शांति है। लेकिन उस शांति के अंदर दुख के वाइब्रेशंस हैं, तो वो सन्नाटे वाली शांति भी नहीं चाहिए। स्मशान में इंसान चला जाता है, वहां पर भी एक शांति है, लेकिन वो शांति भी एक डराने वाली शांति है। इसीलिए तो स्मशान में कोई रहना नहीं चाहता है। तो अकेलेपन वाली शांति भी नहीं चाहिए, दुखदायी शांति भी नहीं चाहिए, डराने वाली शांति भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें कौन सी शांति चाहिए कि जहां हर कर्म करते हुए, अनेक व्यक्तियों के संबंध संपर्क में आते हुए मेरे मन की स्थिति शांत रहे। और ये शांति का अनुभव करने के लिए अपने आप को जानना अति आवश्यक है कि आज हम इस शांति से दूर भी किस लिए हुए? उसका स्थान अशांति ने जो ले लिया है, ये अशांति का स्थान किस आधार पर हमारे जीवन के अंदर आ गया है? तो अशांति का स्थान जो लिया है, क्रोध ने लिया है। और इसलिए बात बात के ऊपर जब व्यक्ति को रिएक्शन आता है, हर बात में नेगेटिवली रिएक्ट करने लग जाता है, तब इंसान अपने आप में अशांति का अनुभव कर देता है, बेचैनी का अनुभव होने लगता है। क्रोध इसीलिए तो महाशत्रु माना गया है। हे अर्जुन, ये क्रोध महाशत्रु है। इस महाशत्रु के पास जाने से दुख और अशांति मिलेगी। ये क्रोध महाशत्रु क्यों कहा गया है? क्योंकि यही इंसान की कमजोरी है, और जैसे ही ये कमजोरी एक बार हमारे स्वभाव में आ जाती है, धीरे धीरे आत्मा को अंदर से खोखला बनाता जाता है। इसीलिए तो व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि जब वो अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता है तो वो क्रोध का हथियार हाथ में लेने लगता है। और इसलिए क्रोधी इंसान को कभी शक्तिशाली नहीं माना गया है, लेकिन वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बाह्य स्वरूप अपनाता है। क्रोधी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो भीतर से खोखला है और ये खोखलेपन को छिपाना चाहता है, इसलिए वो गुस्सा करके समझता है कि मैं अपने खोखलेपन को छिपा दूंगा। वो छिप नहीं सकता है, इसलिए मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ये रिसर्च किया गया है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट गुस्सा कर ले, बॉइलिंग टेंपर एंगर, तो 2 घंटे की कार्य क्षमता उसकी जल जाती है, खत्म हो जाती है। तभी तो भारतीय संस्कृति में भी ये कही हुई बात है कि क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध ऐसी आग है जो इंसान को भी जलाता है, अपने परिवार को भी जलाता है, अपने संबंधों को भी जला के खाक कर देता है। और 5 मिनट के गुस्से में जब इंसान आ जाता है तो 2 घंटे तक वो कोई काम नहीं कर सकता है। 2 घंटे तक वो अनेकों के साथ बैठ करके यही अपने आप में सिद्ध करना चाहता है कि मैंने जो गुस्सा किया ना, वो सही किया, ये व्यक्ति है ही ऐसा, इसीलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। यानी 2 घंटे तक जो उसने गुस्सा किया उसका जस्टिफिकेशन देने में लगा देता है, और जब तक उसको 10 व्यक्ति न मिले ये कहने वाले कि हाँ जो तुमने गुस्सा किया वो ठीक था, वो व्यक्ति था ही ऐसा पात्र जिसके ऊपर गुस्सा करना ही पड़ता है, तब उसके अहम को एक संतुष्टि प्राप्त होती है और वो अपने आप में खुश होने लगता है कि हाँ मैंने जो गुस्सा किया ना वो बुरा नहीं था, वो सही था। तो 2 घंटे तक वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 घंटे तक वो अपने आप को सिद्ध करने में लगा देता है। और अगर व्यक्ति 20 मिनट गुस्सा कर ले तो पूरे 8 घंटे की कार्य क्षमता वो अपनी जला देता है। और इसलिए तो सुबह सुबह अगर कोई गुस्से में आ जाता है और खूब अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए, कहेंगे आज सारा दिन बेकार गया, क्योंकि सुबह ही इस व्यक्ति ने सारा मूड ही खराब कर दिया, गुस्से में आकर के सारी शांति ही खत्म कर दी, मन का संतुलन ही बिगाड़ दिया। कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं मेडिटेशन में भी। कोई कहता है उसके लिए विचार शून्य हो जाओ, और विचार शून्य हो जाएंगे तो भी एक क्षण ऐसी आएंगी जो शांति का अनुभव कराएगा। परंतु विचार शून्य मनुष्य कितनी देर हो सकता है? कुछ घड़ी के लिए, उसके बाद। और कहा जाता है कि कोई भी चीज को जब सप्रेस किया जाता है सप्रेस हो जाएगी, लेकिन जब उसको रिलीज करते हैं तो डबल फोर्स से वो उछलती है या चलती है। ठीक इसी प्रकार मन के विचारों को भी अगर सप्रेस किया जाए सप्रेस हो जाएंगे, परंतु कितनी देर तक? और जब वापस कर्म व्यवहार में आएंगे तब वो मन की गति भी तीव्र गति से चलने लगती है। इसीलिए कई बार कई लोगों को हेडेक हो जाता है, सिर दर्द इसीलिए होता है क्योंकि मन की गति उसके नॉर्मल गति से तेज हो गई। जैसे टेंशन में सिर भारी हो जाता है, टेंशन माना ही विचारों की गति बढ़ जाना। तो वो कुछ घड़ी के लिए शांति का अनुभव तो कर लेता, लेकिन उस शांति के बाद भी एक सिर दर्द का अनुभव करता है। इसलिए विचार शून्य करके भी हमें मन को शांत नहीं करना है। लेकिन ये रियलाइजेशन, ये अवेयरनेस कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, और जितना शांति की स्थिति में इंसान रहता है उतना ही वो शक्तिशाली बनता जाता है। शांति वो हथियार है जो कैसी भी परिस्थिति में इंसान को कई बार मुसीबतों से बचा लेता है। दुनिया में ये भी कहा जाता है कि जो इंसान ज्यादा बोलता है, अधिक बोलता है, वो कई बातों में नुकसान अनुभव करता है। बाद में उसको पश्चाताप होता है कि अरे ये बात नाहक मैंने बोल दी, नहीं बोलता था उस समय, चुप रहता था तो अच्छा होता था। चुप रहने की बात नहीं है, लेकिन चुप भी इंसान तब रह सकता है जब अंदर में शांति का गुण अपनाया होगा। और जितना शांति का गुण वाचा में है उतना ही मन की स्थिति को भी वो शांत चित बना करके हर कर्म कर सकता है, क्योंकि जितना मनुष्य की वाचा अधिक है, बोलना अधिक है, उतना उसके मन की गति भी अति तीव्र है, और इसलिए अंदर की शक्ति को ड्रेन करता है। क्योंकि जितना मनुष्य तोल के बोलेगा, सोच समझ कर बोलेगा, उतना वो कई प्रकार के नुकसानों से बच जाता है और अपने भीतर शांति की शक्ति का संचार कर सकता है। यही शांति की शक्ति उसके अंदर और भी कई गुणों को विकसित करती है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के अंदर शांति है वहाँ उसकी भाषा में भी शालीनता है, सभ्यता है, मधुरता है, नम्रता है। तो शांति के साथ ये जुड़े हुए अनेक गुण है जिसके माध्यम से इंसान का जीवन इतना सुंदर बन जाता है, सद्गुणों से संपन्न हो जाता है, तभी शांति के गुण को फाउंडेशन माना गया है। क्योंकि जिस फाउंडेशन के आधार पर कई अनेक और गुण भी विकसित कर सकता है और उसका जीवन वो सद्गुणों की खुशबू से महकने लगता है। तो इसलिए शांति के स्वगुण को अपने जीवन में कायम करें एक आत्म जागृति के साथ कि मेरा स्वधर्म शांति है, क्रोध नहीं। और इसी शांति के स्वगुण को मुझे निरंतर अपनाना है। ये है शांति का स्वधर्म, शांति का स्वगुण का महत्व। ओम शांति।
आज आपने शांति का परम रस पान किया। प्रिय भाई और बहनों, शांति से ही शांति होती है और शांति सर्व को स्नेह और सम्मान बांटती है। अपने सच्चे दिल से सर्व के लिए परमात्मा से शांति की कामना करें और जीवन में ऐसे निर्णय लीजिए जो आपको शांति के पथ पर ले जाए, तो फिर देखिए आपके जीवन में कैसा निखार आता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य लिखें। यदि आप किसी विशेष विषय पर जानना चाहते हैं तो भी लिखें। हमारा पता है बीके करुणा, ब्रह्मा कुमारीज, शांति वन कॉम्प्लेक्स, तलहटी, आबू रोड, 307510, राजस्थान, इंडिया। फोन नंबर 02974228101208। ईमेल info@brahmakumaris.com। शांति की दिव्य सुगंध से आपका जीवन सदा महकता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।